नमस्कार, नॉकिंग न्यूज डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। हमारे साथ हैं इस वक्त भारत को टेक्नोलॉजी का जो कुछ भी हमारे पास है, कंप्यूटर है इस देश में, आईटी को लेकर आने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले और उसके लिए कोशिशें करने वाले, और बहुत सारे विरोध और परेशानियों के बावजूद इस देश को उसके लिए मनाने वाले, भारत में कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करने वाले सैम पित्रोदा। बचपन से हम लोग उनके बारे में जानते आए हैं, सुनते आए हैं, देखते आए हैं। और राजीव गांधी का जो इस देश में कंप्यूटर को लाने का, तकनीक को लाने का विजन था, उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। आज हम उनसे बात करेंगे तो ज़्यादातर लोग पॉलिटिकल मसलों पे बात कर रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं तो वो इस पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से भारत में ईवीएम का खतरा खड़ा हो गया। लेकिन हम ईवीएम से ज़्यादा आगे जाके एक बड़ा मसला ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस मुल्क में हम क्या सचमुच तकनीक के जरिए आजाद हुए हैं, या हम तकनीक के जरिए गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या तकनीक हमारी आजादी को नुकसान पहुंचा रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पित्रोदा साहब। सर शिकागो से जुड़े हुए हैं, शिकागो में ही है ना सर अभी आप?
जी
जी। तो शिकागो वो जगह है अमेरिका की जहां स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को विश्व बंधुत्व का संदेश दिया था और विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया था, और समानता का, विश्व बंधुत्व का, और जिस तरह के हिंदू आइडियोलॉजी का संदेश उन्होंने दिया, उसकी आज इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। पित्रोदा साहब, बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं इस बीच में, पॉलिटिकल चीजें डिस्कस हो रही हैं, किसी को मोदी की चिंता है, किसी को कांग्रेस की चिंता है, लेकिन मेरी एक चिंता है जिसपे मैं कई वीडियो बना चुका हूं। अभी हाल में आपने, पिछले कुछ समय में आपने हांगकांग में देखा होगा कि किस तरह से सरकार की मशीनरी, स्टेट का सर्विलांस सिस्टम, किस तरह से फेशियल रिकॉग्निशन वाले कैमरे, किस तरह से लोगों का इंटरनेट की ट्रैकिंग करना, और उसके जरिए वहां के जो लोगों का डिसेंट था, वहां के जो लोग खिलाफ थे किसी भी चीज को लेकर अपने देश की नीतियों के, उसको कुचलने की कोशिश की गई। धीरे धीरे भारत में नई दिल्ली में जो सर्विलांस कैमरे लगे हुए हैं, और वो कैमरे फेशियल डिटेक्शन वाले हैं, उसमें ये टेक्नोलॉजी है कि अगर आप कहीं से निकल रहे हैं, एक फ्रेम में अगर 200 लोग भी हैं, तो उन 200 के 200 लोगों को आइडेंटिफाई करके 3 सेकेंड में उनको जिस कंसर्न आदमी को उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देनी होगी, अगर उनको लगता है ये क्रिमिनल है तो वहां दी जा सकती है और उनको ट्रैक किया जा सकता है। कुल मिला के हमारी जो पर्सनल लाइफ है, हमारी प्राइवेसी है, वो पूरी तरह से स्टेट ने कब्जा कर लिया। तो ये बड़ा कंसर्न इस तरह से बनता जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का ये जो एस्पेक्ट है, आप चूंकि इंटरनेशनल फोरम्स में हिस्सा लेते हैं, तो ये आपके लिए कितनी चिंता की बात है, आप इसको कितना गंभीरता से लेते हैं?
ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आपको फ्रीडम
जी,
डेमोक्रेसी, जस्टिस दे सकती है, वही टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके बहुत सारी सरकारें सिटीजन को दबा रही है
जी।
ये एक माइंडसेट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट ओपननेस, एक्सेसिबिलिटी, कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग, डेमोक्रेटाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो इस टेक्नोलॉजी का बहुत दुरुपयोग करते हैं, झूठ फैलाते हैं, भय फैलाते हैं। लेकिन हम मानते हैं कि ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जीत नहीं सकेंगे। अभी चल रहा है क्योंकि नया नया सोशल मीडिया है, लोग अभी समझ नहीं रहे हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। झूठ ज्यादा फैलाया जा रहा है। सो हम समझते हैं कि थोड़े वक्त में
जी
लोग अपना खुद अभ्यास करेंगे और समझेंगे कि यह सत्य है और यह झूठ है। हमें सबको अपना सत्य निकालना है इसमें।
अभी 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 सर दिक्कत जो है ना, देखिए, सच और झूठ वाली दिक्कत तो है ही, क्योंकि जो मास लेवल पे फैलेसी, लॉजिकल फैलेसीज के जरिए आईटी सेल बड़ी बड़ी पार्टियों ने बना रखी हैं, लोगों के ब्रेन को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी फेक न्यूज आती है, और जब तक वो फेक न्यूज क्लैरिटी आती है उसको लेकर, हर रोज हम देखते हैं कि 5-7 बड़ी फेक न्यूज फैलाई गई। जब तक क्लैरिटी आती है तब तक वो 4 और फेंक देते हैं। एक चीज तो ये है। दूसरा, सोशल मीडिया कंपनी जो है उनको जिस तरह से भारत में कानून बना के कंट्रोल किया गया, सरकार की सेंसरशिप चल रही है, 24 घंटे में कभी भी फोन करके किसी भी अकाउंट को टेक डाउन किया जा सकता है, किसी भी अकाउंट को, और इस तरह से सोशल मीडिया कंपनियां
सब होता है अभी।
और सोशल मीडिया कंपनियां जो है वो सब तक कर रही है कि हालत यह है कि एक खबर ये भी थी कि ट्विटर जो है वो माफ कीजिएगा फेसबुक इतना ज्यादा सरकार से एसोसिएट हो गया कि टिकटॉक जो नंबर वन बनने वाला था पूरी दुनिया में, फिर फेसबुक नंबर वन हो गया क्योंकि भारत में उसको बहुत पकड़ मिली, बढ़त मिली। भारत सरकार के पक्ष में भारत का जो कम्युनल एजेंडा है उसको पुश करने के लिए फेसबुक पे गंभीर आरोप लगे, उनकी जो पॉलिसी हेड थी उनको इस्तीफा देना पड़ा, इंटरनेशनल मीडिया पे इस तरह के कवरेज हुए। तो ये भारत में इस तरह की जो चीजें, ये आप कह रहे हैं कि एक लंबे समय बाद हो सकता है कि ये ठीक हो जाए, लेकिन इमीडिएट जो एक थ्रेट है बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का लेके, उसका क्या करेंगे?
उसका बहुत कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इन द शॉर्ट टर्म ये सरकार उसका अच्छा उपयोग करते, उनके लिए लोगों लगा दिया है सिक्योरिटी थ्रेट ऐसा कि कहीं भी आप जाइए, कुछ भी आप कहिए, आपको मॉनिटर किया जाता है। हम जानते हैं हमारे बारे में, दूसरे बारे में तो क्या बताएं। हमारा ट्विटर अकाउंट 7 साल से एक ही नंबर पे पड़ा है, 365,000। हमें पता है कि इसको कैप किया गया है, हमें वो भी पता है कि हमारा फोन शायद कॉन्स्टेंटली मॉनिटर होता है। ठीक है, हम क्या करें? हम समझते हैं कि हमारी लाइफ पब्लिक लाइफ हो गई है, सो हम कहां भी जाएंगे, जहां भी जाएंगे, सबको पता है, क्रेडिट कार्ड से पता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दूसरे होते हैं उससे पता है, एयरलाइन टिकट से पता है, इमिग्रेशन से पता है। सो इन दिस लाइफ आई बिलीव लॉट ऑफ पीपल विद पब्लिक एजेंडा विल हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे आर बीइंग मॉनिटर्ड। उससे कोई बाहर नहीं निकल सकता अभी।
लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं, देखिए आप इस देश में टेक्नोलॉजी को लेकर आए थे, हम लोग इस टेक्नोलॉजी को, हम मानते हैं कि इस देश में से एक रिवॉल्यूशन आया, देश में बदलाव आया, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इस देश की अगर मिसयूज हो रही है और इस देश की आजादी को खतरे में डाल रही है, जैसे पिछले दिनों खबर आई थी कि CAA के दौरान जो लोग वहां उस आंदोलन की जगह पे जा रहे थे उनको मॉनिटर किया जा रहा था, उनके ऊपर नजर रखी जा रही थी, इसी तरह से अलग किसान आंदोलन में बहुत जबरदस्त मॉनिटरिंग की गई। ये लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स आती जा रही हैं, और इनको हम केवल यहां जुबानी जमा खर्च में चर्चा में डालकर आगे बढ़ जाएंगे। आप कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी थ्रेट है और बहुत बड़ा एक कंसर्न है जिस पर उसे बात करनी चाहिए?
नहीं, ये कंसर्न है, ये थ्रेट है, लेकिन क्या हो सकता है? जब बैड प्लेयर्स आर कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट, पीपल इन द गवर्नमेंट डोंट हैव द कैरेक्टर वैल्यूज, तो क्या कर सकते हैं? ये तो एक नाइफ की जैसी चीज है, उससे आप टमाटो भी काट सकते हैं और किसका खून भी कर सकते हैं।
नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या आप, जब हम डेमोक्रेसी में काम करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, तो हम केवल छोड़ तो नहीं सकते ना कि जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर छोड़ दिया, उनकी मर्जी है, वो चाहे तो उसका इस्तेमाल आपको फ्रूट काटने में करें, चाहे तो गर्दन काटने में करें। डेमोक्रेसी में कहीं डिसेंट के लिए जगह होनी चाहिए। सड़क पे आते हैं लोग, विरोध करते हैं। मैंने आपको जब हांगकांग से बात शुरू की तो हांगकांग का एग्जाम्पल है हमारे पास, वहां पर मोबाइल सर्विलांस में लगे, लोकेशन डिटेक्ट की जा रही थी, फेशियल रिकॉग्निशन की बात हो रही थी, तो लोगों ने फिर भी सड़कों पर आंदोलन किया। फेशियल रिकॉग्निशन से बचने के लिए उन्होंने यहाँ लेजर लाइट लगाई, लेकिन सड़क पे आए। अगर उनके मोबाइल ट्रैक हो रहे थे, उन्होंने एक वाईफाई नेटवर्क डेवलप किया जिसमें वो आपस में फोन टू फोन कनेक्ट करते थे, जिसमें इंटरनेट बीच में नहीं आता था, उन्होंने लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हम ठीक है, सरकार जो कर रही है वो उससे ज्यादा किसी भी स्टेट से आप ज्यादा भलाई की उम्मीद नहीं कर सकते। ये तो जनता की तरफ से होना चाहिए ना कि वो उस पर सवाल उठाए। आज कांग्रेस पार्टी चूंकि विपक्ष में है तो वो जनता की तरफ से बात करने का, उसकी आवाज उठाने का, उसमें जागरूकता लाने का कांग्रेस की जिम्मेदारी। मैंने कभी एक भी स्टेटमेंट नहीं सुना पिछले एक डेढ़ साल में कि भारत के लोगों की जो केवल वो पेगासस वाला, चूंकि उसमें एक एक्सपोजे आ गया था और वो बहुत सारे लोगों के, उसमें राहुल गांधी का भी और बहुत सारे फोन ट्रैप किए जा रहे हैं, स्टोरी आ रही थी, तो इसलिए उस पर बात हो गई, बयान हो गया। लेकिन जो एक बड़े स्तर पे सर्विलांस का काम हर तरफ चल रहा है उसको लेकर जो है वो कहीं दिखाई नहीं देती, कोई बेचैनी दिखाई नहीं देती है।
सच है आपकी बात और मैं आपसे मंजूर हूं कि लोगों को स्ट्रीट पे जाना पड़ेगा। जब जब कोई भी पार्टी कुछ कहती है तो सरकार उन पे टूट पड़ती है, ईवीएम हो, पेगासस हो और कुछ भी हो। जब तक लोग स्ट्रीट पे नहीं आएंगे तब तक सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी। अब आप देखिए फार्मर का इश्यू।
नहीं देखिए आप ठीक कह रहे हैं, लोग स्ट्रीट पे आएंगे तभी ध्यान देंगे, मैं आपसे एग्री करता हूं। लेकिन जो जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस लाए, लोगों को स्ट्रीट पे लाने के लिए इंस्पायर करें। आप देखिए किस तरह से हम सबका डाटा कलेक्शन किया जा रहा है। आप तो ट्रेवलिंग एजेंसी कह रहे हैं, आधार
या बिल्कुल
आधार एक सेंटर स्टिंग है जिसके जरिए देश के हर आदमी को वीप कर दिया गया है, उसकी एक 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 एक्टिविटी को ट्रैक किया जा रहा है।
बिल्कुल।
दूसरा अपना कोविन वैक्सीन लगी, जब वैक्सीन लगी तो उसको लेकर जो डाटा कलेक्ट किया गया लोगों का वो डाटा शेयर भी किया गया इंटरनेशनली, एक ग्लोबल सर्वर बनाए गए और वो डाटा अब हमारा जो डाटा है वो कहीं ना कहीं, और डाटा थेफ्ट होती है हमारे देश में, हम कई सारे एग्जाम्पल देख चुके हैं, यहां तक कि आधार का डेटा भी लीक होने का मामला सामने आ चुका है।
बिल्कुल।
तो ये जो टेक्नोलॉजिकल कंसर्न है, मैं आपको एज ए टेक्नोक्रेट में आपसे जानना चाहता हूं कि जब जो हिंदुस्तान में आज हर चीज जब टेक्नोलॉजी हो रही है तो टेक्नोलॉजी का जो एरिया है वो सेंटर ऑफ कंसर्न क्यों नहीं है इस देश में, इस देश की पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है, जबकि टेक्नोलॉजी इस देश की डेमोक्रेसी को आसानी से हड़प ले रही है।
आपकी बात बहुत वाजबी है, इसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किसी ने इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया है क्योंकि एवरीथिंग एल्स अराउंड अस इज सो बैड। आप देखिए एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, महंगाई, फियर, थ्रेट, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, फूड प्राइसेस, इतने सारे इश्यूज हैं अभी देश के सामने, तो ये इश्यू बैक बर्नर पर चला गया है। आई एग्री विथ यू, इट शुड बी टेकन मोर सीरियसली, इट शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस, लेकिन सब जगह से आप परेशान हैं, इसीलिए इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, देना चाहिए।
लेकिन ये जो इश्यू है ये एक ऐसा इश्यू है जिसके कारण जो सब जगह से परेशान लोग हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये जो पार्ट टू अभी हमारा फार्मर्स एजिटेशन हो रहा है उसके ऊपर ड्रोन के साथ गोले बरसाए गए, लोगों को पीटा गया, बोरों में भर के किसानों को पीटा गया।
बिल्कुल।
सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, पहली चीज। दूसरा, सरकार ने जो लोग जो यूट्यूबर्स वहां की ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग कर रहे थे उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए। तो आप रोटी का, कपड़ा का, मकान का, बेरोजगारी का, गरीबी का, महिलाओं की बुरी स्थिति का, दलितों के बुरे हाथ का, जो भी मसला है उस पर आप कोई भी काम करेंगे, अगर टेक्नोलॉजी इस तरह से स्टेट की मशीनरी द्वारा इस्तेमाल की जाती रहेगी तो आप कैसे बचेंगे इतनी तेजी से, इतने चांसेस आए हैं।
सच है आपने हमें ये मौका दिया ये सब्जेक्ट पे बात करने का, मीडिया में कौन मौका देता है ये सब्जेक्ट पे बात करने का। अभी राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं यात्रा में वहां वहां इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। अब मीडिया कभी नहीं बताती है, लोगों को पता भी नहीं है कि जो शहर में राहुल गांधी जाते हैं वहां इंटरनेट पैरालाइज कर दिया जाता है, तो आपका मैसेज बाहर ही नहीं जाता। हमको पता है, राहुल गांधी ने बताया है, लेकिन आप देखिए नेशनल मीडिया में एक दफा भी बात नहीं हुई उसकी। सो मीडिया इज ऑल्सो कंप्लीटली कंट्रोल्ड। आप जोर से चिल्लाइए, सुनने वाला कौन है अभी? सो इट्स नॉट दैट सिंपल, बट आई एग्री विथ योर मेजर पॉइंट एंड योर मेजर पॉइंट वी हैव टू।
आजादी के 75 साल हुए, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आजादी के 75 साल हुए, सरकार ने कहा आपके घर पे तिरंगा लगाइए, सरकार ने कहा अपने घर पे तिरंगा लगाइए, हमने अपने घर पे तिरंगा लगाया, तो तिरंगा लगाने का इन्होंने एक वर्चुअल तरीका निकाला। आप मैप में जाइए, अपने घर को आइडेंटिफाई करिए और वहां पे तिरंगा लगाइए। क्या हुआ? आपके घर की जियो टैगिंग हो गई। भारत का CBSE बच्चों के स्कूल में बाकायदा नोटिफिकेशन भिजवाता है कि आपको इस ऐप के जरिए आना है और रजिस्ट्रेशन करना है, मैंडेटरी है। एक एक आदमी की फ्रीडम कंट्रोल हो रही है। और एक सबसे एडवांस चीज, मैं अगर आप लोग आज इस पे कदम नहीं उठाने वाले हैं तो फ्यूचर के लिए मैं आपको बता रहा हूं, RBI में बहुत तेजी से करेंसी के डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है और उसपे लॉन्च तो कर चुके हैं, लेकिन किस तरह से उसको पेपर करेंसी को रिप्लेस किया जाए इस पे काम चल रहा है। जिस दिन ये काम कंप्लीट हो जाएगा टोटल कंट्रोल हो जाएगा। आज आपको लगता है कि राहुल गांधी की इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बहुत सारी चीजें कि राहुल गांधी की रैली में कौन कौन गया ये भी कोई हो सकता है ट्रैक कर रहा हो, राहुल गांधी की रैली में पैसे कहां से आ रहे हैं ये भी कोई ट्रैक कर रहा हो।
बिल्कुल हो रहा है, अभी हो रहा है,
अभी तो हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या आपके दिमाग में कोई ब्लू प्रिंट है आज की इस डिस्कशन के बाद कि आगे हम क्या कर सकते हैं कि इसको लेकर हम अपने देश को, और मुझे ये चिंता जो है वो देश के आम नागरिक की है क्योंकि वो व्यक्ति पूरी तरह से अब शिकंजे में आ चुका है।
नो, यू हैव टू मेक रेगुलेशंस। अब आप तो रेगुलेशन बना नहीं सकते क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है ही नहीं, वो खुद रेगुलेशन बनाएंगे, रेगुलेशन ऐसा बनाएंगे जो सर्वेलेंस स्टेट बढ़ता जाएगा। एवरीवेयर अथॉरिटेरियन एटीट्यूड इज इन कंट्रोल। इस साल 40 देशों में इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे देशों में अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है स्ट्रॉन्ग होल्ड। अपने वहां ही आप देखिए ना, पाकिस्तान इमरान इज इन जेल, बांग्लादेश देखिए क्या हो रहा है, श्रीलंका देखिए, म्यांमार देखिए, मॉरिशियस देखिए, और फिर इंडिया इज सेम थिंग। सो इट इज बिकमिंग ए वेरी अनडेमोक्रेटिक स्टेट। इंस्टीट्यूशंस आर कैप्चर्ड, सिविल सोसाइटी इज नॉट अलाउड टू फंक्शन, मीडिया इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड। इन दिस काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट the only option left is people to go on street and change the government. There is no other option. People will have to decide what kind of a nation you want to build. Do you want to remain democratic or you want to turn over everything to authoritarian? And we know what happened in Europe. So this election to me is very, very critical election. My talking about surveillance today doesn't mean anything. Of course, it is important. But I can't change laws. I can't control media. Nothing is fair. Judiciary, election commission, police, ED, IT, everybody operates based on what is that government wants. And you don't feel like you are living in a free state. I was talking to a professor, Natasha Call, a couple of days ago. She was invited to go to Karnataka to speak at a conference. And from airport, she was sent back to England. So I asked her, I said, what happened? She said, look, they will not give me any reason. They will not give me any facts. They said, we have orders from Delhi. So I said, what does it mean to have orders from Delhi? Why are you not allowing me to enter? My mother is sick. She's old. I got to see her. And I'm invited. I'm no threat. I'm a lady. I'm a professor. Okay, what kind of a threat I could be to you? Now, what else you want to prove that this is a police state? What else you want to prove that people's freedom is taken away? How could you not allow this professor who was invited by Karnataka government not to come in? But who is there to listen? We can shout from the rooftop. There is nobody to listen. They have a list of 80 professors. I have seen it. From US, Europe, who write something for democracy. Maybe against government in some cases. That list says you are not allowed to come in. They will not be allowed to come in the country. I mean, this is the level of democracy today in the country. And people of India will have to decide in this election. But nobody seems to worry about it. Everybody is still, you know, sort of talking about Ram Temple and God and religion and all that. So what do you do? It is a serious issue.
Rajniti mein jab aapne jaise kaha ki hamare paas ek hi option hai, wo ye hai ki hum desh ke log sadkon pe aaye. दुनिया में ऐसा बहुत कम मामलों में हुआ है कि देश के लोग अपने आप सड़कों पर आ जाएं। कल पटना में एक रैली होती है इंडिया अलायंस की, उस रैली में सारी पार्टियों के लोग इकट्ठे हुए और एक बड़ी प्रेजेंस आम लोगों की रही। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको ऑर्गेनाइज किया और उनको लेकर आए, लोगों के बीच में इश्यूज को ले जाना, अवेयरनेस लाना और माहौल बनाना। आप जब तक इस टेक्नोलॉजी के भरोसे रहेंगे, सोचेंगे मैं ट्वीट कर दूंगा तो कुछ बदल जाएगा या मैं,
नहीं होता, नहीं होता है।
आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। तो ये जो जिम्मेदारी है, ये प्राइमरीली सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपोजिशन की है और इस देश में, और मुझे लगता है कि ये सारे जो इश्यूज हैं इन पे अपोजिशन को अपनी बहुत ज्यादा सेंसिटाइज करने की जरूरत है। और चूंकि आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो तकनीकी समझ रखते हैं और आप कह चुके हैं कि इसकी जरूरत है, आप मान चुके हैं, तो इसको मैं बार बार आपको वहां पर लेकर आऊं उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब एक प्रोग्राम, टाइम बाउंड प्रोग्राम तैयार करने की जरूरत है जिसके जरिए लोगों की आजादी को प्रभावित करने वाले मसलों पर ध्यान दिया जाए। देखिए अभी मसला नेक्स्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ लोगों की भारत में सर्विलेंस का नहीं है। जो डेटा आज आपके पास भारत में, भारत सरकार के पास में है या भारत सरकार एक्सेस कर सकती है, वो डेटा इंटरनेशनल फोर्सेस भी किसी तरह से हासिल कर सकती हैं। पूरी दुनिया में आज इंटरनेट पे जो डोमिनेंस है वो अमेरिका की है। दुनिया भर में आज अमेरिका जहां जो चाहे एक्सेस कर सकता है। आज भी हम देख रहे हैं कि 17 केबल जो रेड सी से आती है अमेरिका से और यहां के लिए, जिसमें से 4 अभी हाउथी उन लोगों ने उड़ा दिया, हाउथी विद्रोहियों ने, वो 4 कट जाती हैं। तो एक कंट्रोल जो है, इंटरनेशनल कंट्रोल जो है बड़ी फोर्सेस का, तो कभी कभी आरोप लगता है कि जो भारत में बड़ी पार्टियां हैं, सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी और दूसरी पार्टियां भी हैं, वो इसमें इंटरनेशनल फोर्सेस के एजेंडा का हिस्सा बनती हैं। और उन्होंने जब इंटरनेट आया तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए नेशनल इंटरेस्ट में, उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उल्टा ये लोग अपने ही देश के लोगों को काबू करने के काम में लग जाते हैं। तो ये एक क्या नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए, कि ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो हमारा आईटी सेक्टर है या दूसरी चीजें हैं, हर रोज नए एप्लीकेशन आना पूरा, और वो सब वहीं से गवर्न होना, क्या ये भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा आने वाले समय में आपको लगता है, हो सकता है?
बिल्कुल, बिल्कुल है, इट इज वेरी क्लियर, बिकॉज टुडे नेशनल सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट डेटा सिक्योरिटी. नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट अबाउट बॉर्डर्स एनी मोर. इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज डेटा ऑफ 1.5 बिलियन पीपल. देखिए चाइनीज ने इसका बड़ी इंटरेस्टिंगली उपयोग किया. ऑन वन हैंड दे आर डूइंग देयर ओन सर्वेलेंस बट दे हैव स्टॉप्ड गूगल, फेसबुक एंड अदर्स टू बिकम डोमिनेंट इन देयर कंट्री. हमने उस पर ध्यान नहीं दिया. इन द नेम ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज ए नेशन विथ एक्सपर्टीज इन आईटी, हम खुद का ट्विटर भी नहीं बना सके, हम खुद का फेसबुक भी नहीं बना सके, व्हाट्सएप भी नहीं बना सके. ये कमाल की बात है. इतना बड़ा देश जिसके पास अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है. 1.5 बिलियन लोगों का देश जिसमें आईटी जायंट्स है, ओएस नहीं बना रहे हैं. तो ये तो गुलामी की मेंटालिटी है. अभी प्रायोरिटीज हमारी दृष्टि से देश की डेमोक्रेसी को ट्रैक पे लाना है. दैट इज प्रायोरिटी नंबर वन. ऑफकोर्स सर्वेलेंस इज पार्ट ऑफ इट. इफ आई वॉज टू आस्क दैट व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस, आई वुड से फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is to bring democracy back where every institution is independent, autonomous, two, civil society is given the right role to play, where they can be watchdog, they can provide services in education, health freely without fear, and three, media got to be completely independent.
ये काम, ये आपने जो दिक्कतें बताई इस देश के लोकतंत्र के खतरे बताए, बड़ी अच्छी बातें आपने कही. मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे दर्शक हिंदी वाले हैं, अगर आप कोशिश करेंगे, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है मुझे पता है, क्योंकि आप अमेरिका में रहते हैं तो आपकी आदत में है कि अंग्रेजी जल्दी बोलते हैं, तो अगर आप रखेंगे तो सबको, ज्यादातर लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी.
यही बात फिर से कह दी आपको.
नहीं, वो तो हम लगातार कह ही रहे हैं, मैं दोहरा भी रहा हूँ. तो डेटा लोकलाइजेशन का भी एक कंसेप्ट आया था. आईटी पॉलिसी बनाई सरकार ने, कहा कि भारत का डेटा आपको भारत में ही रखना पड़ेगा. उसके बाद पता नहीं क्या हुआ और फिर इन्होंने उस पॉलिसी को वापस ले लिया और अब फेसबुक का, गूगल का, व्हाट्सएप का डेटा.
जितनी पॉलिसीज हैं हमारी, अकॉर्डिंग टू मी, ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज are in favor of government and not in favor of citizens. ये भी बदलना है ना. Policies has to benefit citizen, not government. आप election data देखिए. Election data government रख सकती है लेकिन civil society को नहीं दे रहे हैं. Election bond देखिए, government के पास data है, पब्लिक को नहीं दे रहे हैं. सब जगह इट हैज बिकम ए
सर्वेलेंस,
एवरीवेयर. सो इट इज वेरी क्लियर दैट वी आर बिकमिंग नॉन डेमोक्रेटिक. वी आर बिकमिंग ए स्टेट वेयर सिटीजन इज बीइंग वॉच्ड केयरफुली, मॉनिटर्ड, एंड दिस डेटा इज अब्यूज्ड टू हैरेस सिटीजन्स.
एक चीज मुझे और ध्यान में आई कि पार्लियामेंट में अभी बजट, पिछला बजट जो था, इस बजट से पहले वाला बजट, बल्कि दो बजट पहले, केंद्र सरकार ने ये कहा कि प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज करेंगे, उसका डिजिटाइजेशन होगा प्रॉपर्टी का. यानी हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है उस सबको सरकार रिकॉर्ड पे जाए, इंटरनेट पे लाएगी, या कहें कि वो सर्वर में लाएगी. जो कागज पे प्रॉपर्टी है उसको वो डिजिटल फॉर्म में लाके कहीं ना कहीं,
ये बात अच्छी है, ये काम अच्छा है.
लेकिन सर इस बात को रखने में एक बड़ा मसला ये भी है इस देश के लोगों की जो प्रॉपर्टी है, कई सालों से जो प्रॉपर्टी रखी हुई है, एक आदमी की 10 पुश्तों से प्रॉपर्टी आ रही है, वो लोग भाई बहन सब मिलके घर में रहते, ज्वाइंट फैमिली है। अभी अब जब डिजिटाइज होगी प्रॉपर्टी तो फिर किसके नाम लिखी जाएगी, झगड़ा शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों के पास पेपर ही नहीं प्रॉपर्टी के, और वो पेपर जाहिर बात है जब वो अब आप डिजिटाइज करना, सरकार ये घर घर आके तो करेगी नहीं, बोलेगी रजिस्ट्री लेके आ जाओ हम डिजिटाइज कर देंगे, तो आपके पास पेपर नहीं होंगे तो आपकी प्रॉपर्टी खतरे में पड़ जाएगी, एक लास्ट डेट होगी। तो ये मैंने एक एग्जांपल बीच में याद आ गया तो याद दिला दिया, लेकिन
बिल्कुल सच बात है।
पॉइंट ये है कि जितने डिस्कस किए हमने पॉइंट, जितनी चीजें आपने कही कि डेमोक्रेसी के खतरे बताए आपने, इसके बीच में अब चैलेंजेस नए क्या हैं, इनसे आप जब लड़ रहे हैं तो वो कौन कौन से चैलेंजेस आपके सामने हैं जिन जो आप फेस कर रहे हैं, जिसके कारण आसान नहीं रह गया डेमोक्रेसी के लिए लड़ना?
सबसे पहले डेमोक्रेसी हैज टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली। आपको डेमोक्रेसी के बारे में समझना है। हमने कभी किताब लिखी है जो 2 वीक में बाहर आ रही है बाय पेंगुइन, इंग्लिश में है अनफॉर्चुनेटली, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हम ये मानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यूज। आप क्या वैल्यू करते हैं? आप सर्वेलेंस वैल्यू करते हैं और सिटीजन सर्विस वैल्यू करते हैं? आप लव वैल्यू करते हैं या हेट वैल्यू करते हैं? अगर आपकी वैल्यू ही खराब है तो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, आप डेमोक्रेसी का दुरुपयोग करेंगे। जो हो रहा है अभी, यही हुआ यूरोप में भी, और आपकी वैल्यू जो प्रॉपर है तो आप डेमोक्रेसी का पब्लिक गुड के लिए उपयोग करेंगे। अभी सब जगह डेमोक्रेसी में वैल्यूज हैव गॉन डाउन
जी।
अब देखिए, बिजनेस एंड पॉलिटिशियंस have come together and spending billions and billions on election. हम कह रहे हैं कि देखिए, corporate को election funding नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो वोट नहीं दे रहे हैं। corporate थोड़ी वोट देता है, लोग वोट देते हैं, तो लोगों को contribute करने दीजिए election में। ये कहां से ले आया आपकी corporate 200 करोड़ आपको दे दे, लेकिन कॉर्पोरेट इज नॉट वोटिंग। सो ये सब जगह रैकेट बन गया है, डेमोक्रेसी इज बिकम ए रैकेट।
क्यों लेफ्ट पार्टीज की तरह जगह तरह जो है, आपने वैल्यू वाली बात कही, अभी इसको कंटिन्यू रखेंगे, बीच में मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूं। अभी आपने सिर्फ एक ही पॉइंट बताया जो चैलेंजेस है उसको लेकर, जैसे लेफ्ट पार्टीज है वो कॉर्पोरेट से चंदा नहीं लेती है, कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियां इसको क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं वो कहती है कि हम अपनी तरफ से जनता से कॉर्पोरेट से चंदा नहीं लेंगे?
नहीं, अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी अ लॉ। नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी अ लॉ। एक बना दीजिए लॉ कि कॉर्पोरेट विल नॉट बी अलाउड टू फंड इलेक्शंस, खत्म ना।
तो आपको लगता है कि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी इलेक्शन रिफॉर्म्स करने में फेल रही है? एक लॉ बन सकता था जो नहीं बनाया गया।
अभी तक क्या था कि ये चीजें इतनी बड़ी नहीं थी, तो इस पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब ऑल ऑफ अ सडन इट हैज बिकम बिग थिंग। पहले इलेक्शन में इतना ज्यादा पैसा नहीं जाता था, पहले लोग 25 करोड़ 30 करोड़ में खरीदे नहीं जाते थे, अब ये सडनली बदल गया है 10 साल में। सो दीज आर डिफरेंट टाइम्स। And we must change according to time. ये तो क्या है कि सब जगह डेमोक्रेसी has been hijacked, सब जगह। अब आप देखिए अमेरिका में ट्रंप with all his court cases, all his style, everything is the most popular leader. Okay? Netanyahu. सब जगह आप देखिए authoritarian regime has been able to rise. और लोग बेचारे घबराए पड़े हैं सब जगह।
तो इसको आप दूसरा चैलेंज मानते हैं डेमोक्रेसी के लिए हिंदुस्तान की? पहला तो आपने वैल्यू सिस्टम वाला कहा, दूसरा इसको अगर मान लें,
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ब्रिंग डेमोक्रेसी बैक ऑन ट्रैक।
जी,
उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। सो ये इलेक्शन इज नॉट अबाउट मोदी वर्सेस राहुल गांधी और एनीबडी, इट इज नॉट अबाउट एनडीए वर्सेस यूपीए और इंडिया अलायंस, इट इज नॉट अबाउट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इट इज अबाउट द काइंड ऑफ इंडिया वी ऑल बिलीव इन, इट इज अबाउट इंडिया वेयर एवरीवन इज रिस्पेक्टेड, इंडिया दैट कैन लिव विद पीस, इंडिया दैट कैन रिस्पेक्ट पीपल विद डिग्निटी, इंडिया दैट कैन गिव अपॉर्चुनिटीज टू एवरीबॉडी, इंडिया दैट इज नॉट एट फायर बट एट पीस, एंड देन देयर विल बी अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंडिया दैट डजंट लाई, इंडिया दैट डजंट चीट, इंडिया दैट डज नॉट बिकम ए सर्वेलेंस स्टेट, India that provides not only jobs but other opportunities, education, health, housing, food security, security to our women, all of that is possible only if India is democratic, because India is so diverse. I'll give you this example which I give many times, and just even if I'm repeating, I must tell you this. In Rajiv Gandhi's time, I had gone to Soviet Union.
Sir, Hindi.
Rajiv Gandhi ke samay mein hum gaye the Soviet Union.
Ji ji.
Wahan pe ek dinner tha sab ministeron ke saath. To ek minister ne hume drink pite bataya ki Pitroda sahab, hum aapke desh se bahut khush hai. Ke kitna mahan aapka desh hai.
Ji.
Maine bola, kyon? बोले आप इतने डाइवर्स देश को एक साथ जुड़ के रख सकते हैं बिना बंदूक। तो मुझे समझ में नहीं आया ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जब सोवियत यूनियन फेल अपार्ट
जी,
और उनकी जब मशीन गन उल्टी हुई तो पूरा देश टूट गया
जी।
तो उनका कहना था कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां इतने डाइवर्स लोग शांति से रहते हैं, उनकी भाषा अलग है, उनका खाना अलग है, उनका यू नो जेनेटिक पूल अलग है, ओके, विचार अलग है, धर्म अलग है, लेकिन शांति से रह रहे हैं, किसी को बंदूक की जरूरत नहीं है। ये कितना बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है, देखिए आपने उसको आप चैलेंज कर रहे हैं, अभी आप एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, लोगों को पूछ रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, ओके, आप
आपके मुताबिक अब आज से कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए, तीन चीजें कि हम ये करेंगे, ये करें, ये करें तो हम इसको फिक्स कर सकते हैं, वो क्या तीन चीजें जो हो सकती है
हमारी दृष्टि से? पहले तो कांग्रेस पार्टी को डिसाइड करना है, मैं तो एक इंडिविजुअल हूं,
मैं इंडिविजुअल के तौर पे पूछ रहा हूं कि आपकी सलाह कांग्रेस पार्टी को क्या होगी?
नहीं, लेकिन पार्टी बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़ी और अलग अलग विचारों की है, मैं तो एक इंडिविजुअल हूं, तो मैं इंडिविजुअल की तरह से आपको बताऊंगा, पार्टी की तरह से नहीं बता सकता, नो अथॉरिटी, ओके
जी।
सो मैं कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी होगी कि डेमोक्रेसी को वापस लिया जाए। डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी को हाईजेक कर गए हैं लोग, डेमोक्रेसी ऐसे लोगों के हाथ में है जिनकी वैल्यूज बराबर नहीं है
जी।
तो पहले डेमोक्रेसी को वापस लाइए, इसका मतलब इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंट करिए, सिविल सोसाइटी को फ्री करिए, और मीडिया पर कंट्रोल करिए कि जो बिल्कुल फ्री हो जाए, और जहां जहां आरएसएस और सबके लोग बैठे हैं, वाइस चांसलर्स, उन सबको निकाला जाए और फेयर ओपन ऑनेस्ट रीजनेबल पीपल भी इंस्टॉल्ड। ये क्लीनअप बहुत बड़ी चीज है, ये छोटी चीज नहीं है,
बहुत
बड़ी, इसमें 5 साल लग जाएंगे शायद,
समझे, तभी हो पाएगा।
जगह बैठा दिए लोगों को, सब जगह अच्छे अच्छे जगह
कांग्रेस कांग्रेस पार्टी में भी बैठाए हुए हैं बहुत सारे, कई
वो भी सच है,
बार बैठाए
वो भी सच है। ओके, सो कांग्रेस पार्टी को भी क्लीन करना है, वो भी एक काम है। ओके, हम मानते हैं ये बिल्कुल, और यंग लोगों को आगे लाना है क्योंकि यंग लोगों का भविष्य
जी
हाथ में नहीं हो।
जी
80 साल के हमारे जैसे लोग देश चलाएंगे, वो कैसे चलेगा?
जी
देश शुड बी टर्न्ड ओवर टू पीपल इन 40s and 50s।
जी
ओके, सेकंड थिंग आई वुड डू इज इमीडिएटली आई वुड फोकस ऑन इकोनॉमी। तुरंत देश की इकोनॉमी पे फोकस करेंगे क्योंकि ये जब डेटा बेटा सब दिए गए हैं वो बहुत सारे बोगस हैं।
जी
अभी कल ही मैंने एक वीडियो देखा कि एक लड़की पीएचडी की हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली में पकौड़े बना रही है और कह रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिलता कहीं पे। ये कैसी दशा है देश की कि जिस लड़की ने पीएचडी की है, गरीब लड़की जिसके पिताजी और माताजी ने इतना खर्च किया, वो जॉब नहीं मिलता उन्हें।
जी
सो नेक्स्ट थिंग वुड बी टू फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जॉब्स। थर्ड थिंग आई वुड डू इज आई वुड डेफिनेटली फोकस ऑन ओबीसी, दलित, माइनॉरिटीज। आई एम ओबीसी, आई गॉट आउट बाय एक्सीडेंट बिकॉज आई स्टडीड फिजिक्स एंड पीपल फॉरगॉट दैट आई एम अ सन ऑफ ए कारपेंटर। लोग भूल गए कि मैं बड़ाई का लड़का हूं। एजुकेशन इज एम्पावरिंग। तो तीसरा काम यह है कि ओबीसी, दलित, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज देनी है।
आपको क्या लगता है कि ये जो विजन आपने रखा इसके डायरेक्शन में कांग्रेस पार्टी सीरियसली कुछ कर रही है, बींग ए मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, बींग ए इंडिविजुअल, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी सीरियसली इस डायरेक्शन में बढ़ रही है या उसकी जो शिद्दत होनी चाहिए, जो इंटेंसिटी होनी चाहिए वो नहीं है?
जितनी होनी चाहिए उतनी इंटेंसिटी नहीं है, ये मैं ओपनली कह रहा हूं आपसे और सबसे कह रहा हूं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा।
जी,
क्योंकि हमें इसे सोशलाइज नहीं किया है। सी, ये सब विचार ऐसे हैं जिन्हें आपको सोशलाइज करना है। इनके बारे में 6 महीने 9 महीने बात होती है सबसे, तभी वो सरफेस पे आता है। ये इतनी गहरी बातें नहीं हुई है।
जी,
ये तो आपने बोल दिया, पूछा तो मैंने बोल दिया, आपने नहीं पूछा होता तो शायद ये बाहर नहीं आता। आपने पूछा कि 3 चीज बताइए तो हमारे दिमाग में ये 3 चीज आई। नाउ यू मे डिसएग्री,
जी डेफिनेटली
डिसएग्री, व्हिच इज ओके, बट आई वांट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन।
सो मैं इकोनॉमी की बात
करें, मैं आपको बताऊंगा कि 3 चीज जो आपने मांगी वो एक है पुट डेमोक्रेसी बैक ऑन ट्रैक, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड पुट इकोनॉमी ऑन ट्रैक, एंड 3 गिव अपॉर्चुनिटीज टू ओबीसी, दलित्स, माइनॉरिटीज दैट वी हैव नॉट गिवन इन।
एक चीज आपने कही इकोनॉमी, इकोनॉमी पे हम लगातार देख रहे हैं कि इंडिया के शेप रिकवरी के मोड पे आ चुका है, गरीब तेजी से गरीब हो रहा है, अमीर तेजी से अमीर हो रहा है। जितने मार्केट के स्टेट्स आते हैं, 1.5 लाख रुपए से ऊपर वाली मोटरसाइकिल, 2 लाख रुपए से ऊपर वाली मोटरसाइकिल, उसकी सेल बढ़ गई है। रोल्स रॉयस की सेल बढ़ गई है, 10-15 लाख से ऊपर की गाड़ियों की सेल बढ़ गई है। इससे जो छोटे सेगमेंट की मोटरसाइकिल है, कार है, सबकी बिक्री कम हो रही है। एफएमसीजी सेक्टर चैलेंजेस फेस कर रहा है, उसके जो 2-2, 5-5 रुपए के जो छोटे पैकेट बना रहा है वो भी नहीं बिक पा रहे हैं, उसकी ग्रोथ एक जगह रुक गई है। तो कांग्रेस पार्टी ने 2019 में जब चुनाव आया था तो कांग्रेस पार्टी एक मिनिमम इनकम गारंटी प्रोग्राम लेकर आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि 72,000 रुपए हम हर परिवार को देंगे साल में, और ये गारंटी है कि आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। और ये आइडिया इकोनॉमी के उस स्कूल से आता है जो ये कहता है कि जनता को आप पैसा दो, उसमें कांग्रेस का हिस्ट्री है, मनरेगा है और दूसरी चीजें हैं जो उस इस आइडियोलॉजी पे काम करने वाली हैं। आम आदमी को पैसा दो, उस पैसे से वो खर्च करे, खर्च करने से इकोनॉमी बढ़े, इंडस्ट्री बढ़े, काम धंधे बढ़े, और जब वो काम धंधे बढ़ेंगे तो वहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। भारत चला गया क्रोनी कैपिटलिज्म के मोड पे, जिसमें सरकार ने ये सोचा, ये आइडियोलॉजी, ये भी मान्यता है कि भाई ट्रिकल डाउन थ्योरी है, ज्यादा से ज्यादा पैसा आप उठा के अमीरों को दे दो, वो पैसा धीरे धीरे करके जनता तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमारे देश में वो नीचे आ भी रहा है,
कोई भी रेस में नहीं आ रहा, कोई भी रेस में नहीं आ रहा
जी। तो अब ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म वाला एक और ऐड हो गया कि आपने कुछ सिलेक्टिव उद्योगपतियों को दे दिया, तो इस बार जब कांग्रेस पार्टी चुनाव में आ रही है और केशव रिकवरी सबसे बड़ा चैलेंज है, गरीब के और गरीब होते जाने का, बेरोजगार होते जाने की चुनौती और सबसे बड़ी इतिहास में, भारत के इतिहास में इतनी बड़ी चुनौती कभी नहीं रही, पहले गरीब होते थे तो सब होते थे, तो आज जब ये अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी अडानी अंबानी को क्रिटिसाइज करके पॉलिटिकल गेन तो करती है कि भाई ये मोदी जी के जो नजदीक लोग हैं उन लोगों को गेन मिल रहा है, लेकिन आम आदमी की दिक्कतें दूर करने का जो विजन 2019 में दिख रहा था, आपको लगता है कि वो गायब है आज?
जब हम और कांग्रेस पार्टी पावर में आएगी, इंडिया अलायंस पावर में आएगा, तो हम डेफिनेटली प्रमोट करेंगे कि वी हैव टू फोकस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन इन ए बिग वे, इन ए वे वी हैव नेवर डन बिफोर। अभी क्या है कि अप्रोच है टॉप डाउन
जी,
टॉप में जो 5-10 लोग हैं उनको कंट्रोल करिए, उनसे पैसा वैसा मांग लीजिए और नीचे जो होना वो होए
जी।
हमें उसको बॉटम अप अप्रोच बनाना है
जी।
वी हैव टू मेक श्योर दैट स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और नहीं ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिसमें 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ जाते हैं, उसकी वजह 1-1 करोड़ 5,000 स्मॉल इंडस्ट्रीज को देने हैं। जर्मनी एंड जापान वॉज रीबिल्ट बाय एसएमईज, नॉट बाय बिग प्रोजेक्ट्स। तो इकोनॉमिक मॉडल बिल्कुल बदलना है। हमारे दोस्त हैं अरुण मायरा, वो बहुत लिखते हैं इसके बारे में, हमारे बहुत सारे अदर दोस्त हैं, यू नो, अशोक खोसला, अशोक चटर्जी, किरण कारणी के अदर्स, ये सब लोग कह रहे हैं हमको बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्केल बाय नेटवर्किंग स्मॉल कंपनीज, एसएमई, इंडियन टैलेंट, इंडियन सॉइल, इंडियन माइक्रोब्स, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, खासतौर पे जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं, आप रॉकफेलर फैमिली है, बिल गेट्स हैं, अभी फिर वो आजकल चक्कर लगा रहे हैं, फिर कुछ प्रधानमंत्री के साथ में, देश के साथ में डील करके जाएंगे, इस तरह से आपका जो जॉर्ज सोरोस है, इस तरह के जो लोग हैं, वो हिंदुस्तान में ये डिसेंट्रलाइजेशन का आपका फार्मूला है, इस फार्मूले के आने के की पे डिस्कस करने के साथ ही वो चाहेंगे कि आप लोग अभी सरकार में आए?
देखिए, वो तो वोट नहीं दे रहे हैं, वोट तो इंडियन लोग दे रहे हैं, इंडियन लोग उनको वोट दे रहे हैं और अपने देश के लिए वोट दे रहे हैं। इंडियन लोगों को सोचना है कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए या हमें सेंट्रलाइजेशन चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए और हमें अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चाहिए, हमें मीडिया कंट्रोल चाहिए और मीडिया विच इज फेयर टू एवरीबडी चाहिए, हमें खाली 10% टॉप क्लास लोगों के लिए जॉब चाहिए और 90% ऑफ द ओबीसी, दलित एंड अदर्स के लिए चाहिए। ये लोगों को सोचना है। ये इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है देश के बारे में, 2024 देश को दिशा देगा
कहाँ जाना है। डेफिनेटली आप अगर लोकतंत्र के रास्ते पे जाएंगे, आप और पे जाएंगे, ये तय करेगा
कोई नहीं है, ये मोदी मोदी सब यू नो छोड़ दीजिए,
मोदी एक कंपोनेंट है उस पूरे सिस्टम का,
कंपोनेंट है, बिल्कुल बेकार है, समझे? सब झूठ बोलते हैं, सब पर्सनल अटैक करते हैं, छोटे छोटे बच्चों की तरह लड़ते हैं और देश का पूरा ध्यान नहीं देते। उन्हें झूठ बोलने में कोई शर्म ही नहीं आती, कुछ भी बोल दिया, मन में आया वो बोल दिया। ओके, सो देश के लोगों को सोचना है और देश के लोग मूर्ख नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि इंडियंस आर नॉट यू नो फूल्स, दे आर वेरी स्मार्ट। हमने देखा है जब जब जरूर पड़ती है तो इंडियन वोटर डिसाइड्स द राइट थिंग्स, सो हमें बहुत विश्वास है।
अब वहीं से देखिए फिर बात वहीं वो टेक्नोलॉजी वाली चीजें जहां से हमने शुरू किया था, ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि जो भारत का वोटर,
अगर ईवीएम छेड़छाड़ नहीं होती है तो रिजल्ट्स एक आएगा, अगर ईवीएम रखा और छेड़छाड़ होगी तो रिजल्ट पता है 400 सीट आएगी बीजेपी की, सीधी बात है, तो कह रहे हैं। ओके,
और आपका मैंने एक, आप लोगों का एक सेमिनार था उसका मैंने एक वीडियो बनाया था कि उसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। मैंने भी एक इन्वेस्टिगेशन किया था कि किस तरह से ईवीएम जो है वो वल्नरेबल है, उसको किस तरह से सीरियल पोर्ट से कलेक्ट कनेक्ट किया जाता है, दो दो तीन तीन दफा
सारी चीजें हो सकती है,
और वो सीरियल पोर्ट वाला पार्ट जो है उसको कभी सील ही नहीं किया जाता है, तो वो बहुत सारी चीजें हैं ईवीएम को लेकर। लेकिन ईवीएम के साथ साथ जो दूसरे चैलेंजेस हैं जो आपके ब्रेन के साथ में खेला जा रहा है, बहुत सारी अलग अलग आप देख रहे होंगे चीजें सामने आ रही हैं कि सोशल मीडिया पे पूरी एक एजेंसी थी जो फेसबुक का सारा डेटा कलेक्ट करके जिसमें बहुत, और वो किस तरह से लोगों की कंडीशनिंग करनी है कस्टमाइज तरह का माइक्रो लेवल पे कि भैया इस गांव के लोग जो है ये इस कास्ट के नाम पे वोट देते हैं तो भड़काऊ एसएमएस इस कास्ट के खिलाफ इस गांव में करना है, इस गांव में हिंदू चलेगा, इसमें मुसलमान चलेगा, इसमें पिछड़ा, इस तरह का एकदम कस्टमाइज डाटा इकट्ठा करके ब्रेन कंट्रोल किया जा रहा है। ये जो चीजें जितनी सारी हैं, अलग अलग एजेंसियां घूम रही हैं, इन सारी चीजों के बीच में आपको लगता है कि आज की तारीख में वोटर इंडिपेंडेंट सोच भी पा रहा है?
मैं तो बड़ी सीधी बात कह रहा हूं आपको, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, उनको जो करना वो करे, आपको जो भी कहना वो कहे, आपको दिल से सोचना है कि देश का भविष्य डेमोक्रेसी में है या ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट में है। आप जस्ट एक ही चीज पर ध्यान दीजिए, बाकी बकवास को मत सुनिए, बाकी सब बकवास है। अगर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया इस वक्त, तो देश को वापस लाना डेमोक्रेसी के रास्ते पर,
और इस पूरे डिस्कशन में जितना जोर डेमोक्रेसी पे पैत्रोदा साहब का है, उसके बाद मेरा फर्ज बनता है कि डेमोक्रेसी को सिंप्लीफाई करके, जब तो मैं वीडियो में बताता रहता हूं, आपको एक और उदाहरण दूं। एक आदमी है, अभी पिछले दिनों उत्तराखंड में टनल में कुछ लोग फंस गए थे, उस आदमी का घर दिल्ली में बुलडोजर से गिरा दिया गया। एक इमीडिएट चीज आपके दिमाग में आएगी, हो सकता है उसने इंक्रोचमेंट करके बनाया हो, हो सकता है उसका झुग्गी बस्ती रही हो कुछ उसने, हालांकि वो भी लोगों को जीने का और रहने का हक है, धरती का मालिकाना हक बात की चीज है, पहली चीज है इस धरती पे आदमी को रहने के लिए जगह हो। लेकिन पता चला कि उस आदमी के पास रजिस्ट्री भी है, रजिस्टर्ड उसका मकान है सरकारी रिकॉर्ड में, उसके बाद गिरा दिया गया। अब सरकारी एजेंसियां उससे कह रही है कि हम तुमको अल्टरनेट घर देने को तैयार है, ले लो। वो आदमी ये कह रहा है कि भाई मुझे ये घर आप यही वाला दीजिए। तो ये खबर है जो आप खबर के तौर पर देख रहे हैं, इसको लोकतंत्र के नजरिए से देखिए, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, आपके घर की भी रजिस्ट्री है, आपका भी घर आप रहते हैं और अचानक आके बुलडोजर गिरा दे, कुछ भी बहाना बनाते हैं, ऐसे कई जगहों पे बुलडोजर गिराए जा रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है ये कहे कि हम इस वजह से गिरा, कह देते हैं ये मकान जर्जर हो गया था इसलिए गिरा दिया, कहीं कह देते हैं अवैध बना था इसलिए गिरा दिया, और पब्लिक में सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि हमने इसको छक्के छुड़ा दिए, इनको टाइट करने के लिए गिरा दिया। तो मेरा ये पॉइंट ये है कि जो आदमी जिसका घर केरा दिल्ली में, ये सबके समझने की चीज है, वो आदमी क्या अपना घर गिराने वालों को सजा दिलवा सकता है? क्या वो आदमी आसानी से, भले उसका घर गिराने वाला कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको जेल भिजवा सकता है या उससे जुर्माना वसूल सकता है? क्या भारत में धारावी में रहने वाले जो लोग हैं, जिस पूरी धारावी को अडानी के नाम कर दिया गया है, वहां पर अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसका घर छीना जा रहा है, जो आदमी 20 साल से रह रहा है उसका भी हक नहीं है अपने घर पे जो उसने खरीदा हुआ है? तो अगर आप आम आदमी हैं, गरीब से गरीब आदमी को सोचिए, और आप अगर न्याय हासिल कर सकते हैं सरकार में जाके, कोर्ट में जाके, जैसे भी, तब तो आपकी डेमोक्रेसी है। लेकिन आप सरकार को इतना पावरफुल बना दोगे, सरकारी लोगों को इतना पावरफुल बना दोगे,
हो गया है, आज
खुशी हो रही है कि आप बना रहे हो, ये बना रहे हो, लेकिन आप, हाँ, तो जो डेमोक्रेसी है आपकी, वो इसी में है कि आप शान से जी सको और आप प्रधानमंत्री से भी बढ़ जाओ, मैं इस देश का नागरिक हूं, मेरे साथ गलत हुआ है तो कैसे हुआ है, इसको यही रिस्टोर करने की बात है डेमोक्रेसी के नाम पर, और कुछ रिस्टोर करने की बात नहीं है।
डेमोक्रेसी ये आजादी है, हमारे फाउंडिंग फादर्स ब्रिटिश के साथ लड़े आजादी के लिए, अब हमारी आजादी छीनी जा रही है, सब तरह की आजादी। सो डेमोक्रेसी इज लार्जर पब्लिक गुड, डेमोक्रेसी इज अबाउट न्याय। आपने जैसे बताया कि हमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस सिस्टम में हमें न्याय नहीं मिलेगा। जब प्रोफेसर कॉल वाज सेंट बैक फ्रॉम बैंगलोर, इट वाज अन्याय। एक लड़की है, प्रोफेसर है, जो पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है सिवाय की स्टडी करना, आपको रिस्पेक्ट से उनको बुलाना चाहिए, आपको उन्हें जवाब देना चाहिए। यू कांट से कि दिल्ली से ऑर्डर आया है, ये कैसी पुलिस जो जवाब देती है कि दिल्ली से ऑर्डर आया है।
एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक जस्टिस गंगोपाध्याय है कोलकाता हाई कोर्ट में, उनको कई बार सुप्रीम कोर्ट छाड़ चुका था, उनके पास जब भी सरकार से जुड़ा हुआ कोई मामला आता था, वहां से लेके पुलिस से, स्टेट पुलिस से, वो सीबीआई को दे देते थे। और अब उन्होंने ऐलान किया है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा।
बिल्कुल बिल्कुल,
उनके ऊपर कोर्ट में खुलेआम ये आरोप लगाए गए कि भाई साहब आप सारे फैसले बीजेपी के पक्ष में क्यों देते हैं। अब देखिए, ये एक तरह से जुडिशरी का कंटेंट भी है, अब मानना है कि आप किसी की नियत पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये चीजें आ रही हैं सामने। और वो आप रिटायरमेंट के बाद कह रहे हैं मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा,
इसीलिए इसीलिए मैंने पहले आपको बताया कि डेमोक्रेसी इज अबाउट वैल्यूज,
जी,
कैरेक्टर, आप किस चीज में मानते हैं। ये तो क्या है कि डेमोक्रेसी का उपयोग करके झूठ करते हैं और कहते हैं हम डेमोक्रेसी हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और करते हैं बिल्कुल उल्टा।
सो आई वांट, एक जो पर्सनल सिक्योरिटी है हमारी, मैं इसके साथ खत्म करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पेत्रोदा साहब, जो हमारी पर्सनल सिक्योरिटी, मेरा घर है, मेरे घर पे, मेरी कोठी पे, मेरे बंगले पे, मेरा खेत पे कोई कल के दिन आके अपनी पार्टी का झंडा लगा दे और चार गुंडे पहलवान उसमें रहने लगे, आप उनको निकाल के बाहर ना फेंक पाए, तो आपकी डेमोक्रेसी में कहीं कमी है।
बिल्कुल,
जो सरकारी पहलवान है ना, जो सरकारी बाहुबली है पुलिस, उसको आपकी मदद के लिए होना चाहिए, वो डेमोक्रेसी है। और अगर ये कमजोर हो रहा है तो आप जिसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, स्मार्ट गेम खेलते हैं, ये खिला दिया, ये पटक दिया, क्या पटकरी मारी है, क्या दांव चला है, ये नौटंकी नहीं है, आप इसके दर्शक नहीं है, आप इसके पात्र हैं।
बहुत अच्छी तरह से
हाँ, आप अपने, ये आपके जीवन का हिस्सा है, और ये जो कुछ हो रहा है, ये आप इसको भुगत रहे हैं। आज बगल वाले को बगल वाला भुगत रहा है, आपका ध्यान नहीं जा रहा है, तो इसलिए बचाना जरूरी है कि किसी के साथ भी होगा तो नहीं होना चाहिए, उसको रोकना है, यही डेमोक्रेसी की लड़ाई है। इसको आप किसी भी बड़े तौर पे छोट ली समझ लीजिए, छोटे तौर पे समझ लीजिए। इस देश में आदमी कह नहीं सकता, एक आदमी अपनी आंखों से देख रहा है, पत्रकार वीडियो बना के दिखा नहीं सकता, उसका चैनल बंद कर देते हैं। तो ये सब जो है वो
मैं तो वोटर को यही रिक्वेस्ट करूंगा
जी
कि इस वक्त 2024 के इलेक्शन में आप बहुत सुनिए मत किसी से, आप आपके दिल में जाइए, पूछिए दिल से कि भारत के लिए आजादी और डेमोक्रेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, और समझिए कि 2024 इलेक्शन देश को दिशा देगा और आप देश को दिशा देंगे। किसी को मत सुनिए, आपके दिल को सुनिए। अगर आपका दिल कहता है कि मुझे डेमोक्रेसी चाहिए, मुझे सच्ची आजादी चाहिए, तो उस तरफ वोट करिए। अगर आपको चाहिए कि मुझे आजादी नहीं चाहिए, मुझे ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट चाहिए, तो आप डिसीजन ले लीजिए। ये आपका डिसीजन है, लेकिन आपके बच्चे इसको भोगेंगे। सो आपके लिए नहीं वोट दे रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए वोट दे रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया पत्रो साहब आपका, आपने समय निकाला और वहां पर शिकागो में रहने के बावजूद आप लगातार भारत के अफेयर्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इतना ज्यादा आप अपनी तरफ से योगदान देना चाह रहे हैं इस देश में, आप कुछ बेहतर के लिए काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि भारत के जो लोग हैं उन लोगों को डेमोक्रेसी मिलेगी, डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी इस देश की और शान से जिंदा रहेगी। और डेमोक्रेसी के जो खतरे आज हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किए, ये कहीं ना कहीं आपको ये तय करने में मदद करेंगे कि हमारी लोकतंत्र के लिए चुनौतियां क्या क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
धन्यवाद, नमस्कार। और आपने बड़ा अच्छा ट्विस्ट दिया ये कॉन्वर्सेशन को, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू
सर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तो ये थे सैम पित्रोदा। अभी एक चीज हमारे को साफ हुई कि कांग्रेस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी को लेकर बहुत सारी बड़ी चुनौतियां हैं, बहुत सारे बड़े ऐसे मसले हैं जो कि अभी हमारे और इस देश के लिए संकट के तौर पे खड़े हुए हैं। आज की तारीख में ये भी हमको पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से देश के लोकतंत्र की चुनौतियों को जनता के सामने रखने में सक्षम नहीं है, वो भी मसले को दिक्कतों को समझ नहीं पा रही है। इससे में ऐसी स्थितियों में मेरे आपके लिए और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इस देश के बुद्धिजीवियों के लिए कि लोकतंत्र से जुड़े हुए मसलों को सामने रखें। ना तो सत्ता से उम्मीद करनी चाहिए, ना विपक्ष से करनी चाहिए। जो लोग विपक्ष का काम करने के एक्सपर्ट हैं वो सत्ता में बैठे हुए हैं, और जो लोग सत्ता के अलावा कुछ और नहीं कर पाते हैं वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। और ये दोनों लोग मिलके सिर्फ ये मुद्दा चलेगा, ये नहीं चलेगा, इस पे वोट मांगूंगा तो मिल जाएगा, मैं ये डायलॉग बोल दूंगा, मैं वो डायलॉग बोल दूंगा, या मैं ये ट्वीट कर दूंगा और ये मसला लेके आऊंगा, ये पहलवान अंबाले का, वो पहलवान पटियाले का में लगे हुए हैं। देश की जरूरत, मेरी जरूरत, आपकी जरूरत, मेरी आजादी, मेरी जिंदगी बेहतर कैसे हो, इस देश का हर आदमी शान से कैसे जी सके, सिर उठाकर कैसे जी सके, इसको लेकर अभी भी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। कुछ कॉर्नर्स में है, उनका जिक्र करूंगा तो एक तुलना हो जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये भी उस जागृति में एक योगदान होगा। नमस्कार, जय हिंद।